ರಾಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ತೀರವನ ಸಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ತೀರವನ ಸಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಗಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ತೀರವನ ಸಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 Radha Giri Radha Giri Gari Radha Giri Gari Radha Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada, 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 Prabhupada Hari Sai Gora, Hari Gora, Hari Gora, Hari Gora, Hari Gora Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada Maharaj ki Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Neshtake Srimad Bhagavatam Kandas Ajay Dos Slok Raman 40-39 Na te abhavashe shvavashya karanam Na te abhavashe shvavashya karanam Vina vinodam bhattar kayamahe Vina vinodam bhattar kayamahe Bhavo nirodha sitya pravitraya Bhavo Nirodha Sthitya Akhya Vidhya Krutayata Svabhayatri Atmani Nateya Bhavashya Esha Bhavashya Karanam विना विनोदं वत्सार्थयामहे। भवो निरोधा स्थितिरस्य विद्धया। कृताय तत्स्वाभयात्राय आत्मनि न चेयभवशेष भवस्य कारणम्। विना विनोदं वत्सार्थयामहे। भवो निरोध स्थितिरस्य विद्धया। कृताय तत्स्वाभयात्राय आत्मनि आए हुए शब्द इस प्रकार है। न नहीं ते आपके अभवश्य जन्म मृत्यु पालन पोषण से परे है, जो उनका भविष्य आपके जन्म का ईश्वर ये ईश्वर कारणम कारण विना रहित विनोदम लीलाए आपको अवश्य होकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है। बस फिर भी तर्क या महे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें आपकी लीला ही समझे। भव जन्म निरोध मृत्यु स्थिति पालन अपि अविद्या माया द्वारा कृता किया गया यत् क्योंकि त्वये तुमको अभय आश्रय ये सबों के निर्भय आश्रय
आत्मने सामान्य जीवन का अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है, अतः इस जगत में आपका जन्म एकमात्र अलादनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय उसके किए गए सभी आपकी बहिरिंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 15:7 है, ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, सारे जीव भगवान के अंश रूप है, अतएव गुणात्मक रूप में वे भगवान के अभिन्न है। हम यह समझ सकते हैं कि सब जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं तो उसका कारण उनकी अलादनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। भगवत गीता में 4:7 में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्धन्य होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को हम कम करने की आवश्यकता होती है तो भगवान कई प्रकार के कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नाना शक्तियां हैं। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीव की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख या भोगवांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते, उनका कारण उनकी अलादनी शक्ति का कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं कि भगवान को आने की क्या आवश्यकता है, किंतु उसका उत्तर यही है कि उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए, वे जीव के इच्छा के नियंत्रित क्यों है। भगवान इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, करने के लिए मुक्त है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि बिना विनोद बद तर्क याम है, वे विनोद वश ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आता है तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल के बाध्य बंध जाता है, किंतु यदि कोई भगवान के शरण कमलों की शरण खोज लेता है तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृता यतस्वा सुयाश्रियत आत्मनि, जो भगवान के शरण कमलों का आश्रय खोज लेता है वही सदा निर्भय रहता है, क्योंकि हम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम कृष्ण के बिना स्वतंत्रता हो सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंध जाते हैं। जब स्वतंत्रता हो सकते हैं, इसी विचार से हम बंध जाते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के शरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है, क्योंकि कृष्ण को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते और क्योंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं, किंतु हम इन मोहमय समस्याओं में इसलिए जकड़ गए हैं कि क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जिवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। अतः यदि हम सदैव भगवान का चिंतन, उनका गुणगान और उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है कि श्रवणम गुणन स्मरण च चिंतन, तो हमें अपनी आदि नैतिक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने माता देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करें जो पहले से ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो युक्तपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋतुभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग चार्थमेकं पुरुषः पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी रूपं बुधिर्यास्ताहं प्रपद्ये। सूर्यसत्समकान्ते अरुणवसन सुबलित प्रकांड देह कमललोचन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत पर कुछ बोलने का या गुस्सा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से श्रवण करने का अवसर हमें रोज प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद की असीम कृपा है जो इस भौतिक जगत में श्रीमद् भागवतम यथार्थ रूप में दिया है, जो एक एक श्लोक करके हर रोज चर्चा होती है। तो इस अंतर्गत प्रसंग के अनुसार देवताओं द्वारा गर्भस्थिति का अभी संध्याय प्रसंग, जो मथुरा में कंस का कारागृह में माता देवकी और वसुदेव बंद है और भगवान माता देवकी के हृदय में आ चुके हैं और देवताओं ब्रह्मा शिव नारद आदि व्यास देव सभी और अन्य अन्य देवताओं के साथ गर्भस्थिति करते हैं गुप्त रूप से उस कारागार में। भगवान में कहा ईश्वर परम कृष्ण का परिचय दे रहे हैं देवताओं जो गर्भ में हैं, फिर भी उन बड़े बड़े देवताओं स्तुति करते हैं, जब भी प्रकट नहीं हुए फिर भी। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वास्तव में सबका स्रोत्र है। और इसी अंतर्गत ये महत्वपूर्ण श्लोक चल रहा है, भी पूरी स्तुति में एक एक उपदेश है, उसमें सात्विक है, तत्व है और साथ साथ में लीला भी है। तो आज का यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान का प्रागत्य किस रूप में और किस तरह और क्यों होता है वो आंतरिक भाव बता रहे देवताओं। कल के श्लोक में हम सुना कि देवताओं कह रहे थे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप असुरों का विनाश करेंगे और विनाश करके आप इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे और आपका चरण का चिन्ह जब हम देखेंगे तो हम अपना सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह देवताओं स्तुति करते करते ऐसा उसने महसूस किया कि हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, तो तुरंत आज का श्लोक ये उच्चारण करते हैं तो अपनी स्थिति पर ध्यान देते हुए और भगवान की स्थिति भी बताते हैं, क्या भगवान की स्थिति है और क्या इस जीव की स्थिति है। आज का श्लोक में ये दो विषय प्रस्तुत करते हैं देवताओं, खास करके शिव ब्रह्मा आदि। जो भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, अलाग्नी शक्ति और बहिरंगा शक्ति, अविद्या शक्ति जो माया शक्ति कहा जाता है, और जीव शक्ति जो तटस्थ शक्ति है वो। तो भगवान का जन्म इस भौतिक जगत में जो जीव ग्रहण करता है उसी तरह नहीं है, सकाम कर्म के द्वारा प्रभुपाद वहां से शुरू करते हैं। कोई जीव जब भौतिक जगत में आते हैं तो उसका कर्म के अनुसार इस भौतिक जगत में आते हैं। हम प्राय देखते हैं कि एक ही समय किसी और एक ही हॉस्पिटल में एक ही स्थान पर और एक ही मुहूर्त में किसी का जन्म होता है, एक करोड़पति होता है बच्चा और एक रोड़पति होता है। जो करोड़पति होता है उनका पिछले जन्म का सकाम कर्म के कारण उनको अमीर परिवार में या जन्म मिलता है, तो उनका पिताजी उनको पहले से ही बैंक बैलेंस कर देते हैं और जन्मते ही उसने कुछ कर्म नहीं किया फिर भी उनके बैंक बैलेंस उनको प्राप्त हो जाता है। और इसी हॉस्पिटल या उसी स्थान पर दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो उनके पिता का कोई कर्जदार होता है, कर्ज उनके पिता का, तो वो अपने आप उस बच्चे को भी प्राप्त हो जाता है। तो उसने कुछ कर्ज किया नहीं, ऐसा खराब कार्य किया नहीं, फिर भी उनके कर्म में कर्ज आ गया। तो इसी तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। तो भगवान का जन्म किस तरह होता है और क्यों होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की हानि होती है तब भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद साथ में ये भी अंकित करते हैं कि वो भी मुख्य कारण नहीं है। और जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि ये धर्म का स्थापन करना और असुरों का विनाश करना ये तो संकल्प मात्र है, संकल्प मात्र, संकल्प करने से वो धर्म की स्थापना कर देते हैं भगवान और असुर का विनाश कर देते, पूरी पृथ्वी का या पूरा ब्रह्मांड का नाश करते हैं संकल्प से, तो फिर उनको सहारे की जरूरत क्या है, तो वो भी कारण नहीं है। तो पहले हम जीव की चर्चा करेंगे, जीव इस भौतिक जगत में आकर किस तरह फंसता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जब इस भौतिक जगत में आते हैं उनको चार प्रकार का दुख होता ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तीन और दुख आते हैं आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, सात प्रकार के दुख इस भौतिक जगत में कोई भी आए उनको सात प्रकार का दुख प्राप्त होता है। तो इसको दुख ये क्यों मिलता है, तो भगवद गीता में 13 अध्याय में और 22 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान के पुरुष प्रकृति स्थित है भूमते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सत असत योनि जन्म छु। जब जीव इस भौतिक जगत में आते हैं तब ये गुण के प्रभाव से तीन गुण जो दो गुण है तमो गुण है और सत्व गुण है, इस तीन गुणों के प्रभाव से जीव इस भौतिक जगत में बंध जाता है और बंधने के कारण वह सत और असत मतलब अच्छी योनि मतलब मनुष्य योनि प्राप्त करता है, असत मतलब पशु योनि प्राप्त करता है गुण के प्रभाव से। ये तीन गुणों के अंदर ही सारे जीव बच जाते हैं। और इनकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में कही है कि जब भगवान कहते हैं कि पुरुष भगवान की ये कहते हैं कि जीव जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो गुण के प्रभाव में बंध जाते हैं और बंधने के कारण मनुष्य जब सोचता है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, ईश्वर बनने की इच्छा करता है, तब उनको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन पर सदा बहुत होती है शास्त्र में, लेकिन उनके आगे सदा होती नहीं। जब इस बात उठती है तब प्रश्न तुरंत मन में उठता है कि क्या हम भगवान के धाम में थे पहले, वहां से आना पड़ता है। भगवान कहते भगवद गीता में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम, मेरा धाम में जो कोई आता है वो फिर वापस नहीं आता है। तो फिर वहां तो कोई इच्छा होती नहीं स्वतंत्रता होने की, फिर क्यों आते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण बोली अनादि बहिर्मुख, अनादि उसका कोई समय नहीं है। जब कृष्ण को भूल गया है जीव, कभी भूला है वो कुछ समय नहीं है। और वो भी कहा यद गत्वा न निवर्तते तद् धाम परम, भगवान का जो शाश्वत धाम है उससे वहां कोई नहीं आता है वापस। एक बार जो भगवत धाम गया है वो फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। अगर वहां से वापस आना पड़ता है तो फिर ये मेहनत क्यों करें, तो ये मेहनत करने कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन वहां से कोई नहीं धाम आवास पास आता है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जो भगवान का शरीर है वो भी एक धाम कहा जाता है। तो जब भगवान इस सृष्टि को प्रलय करते हैं, नाश करते हैं, तो सारे जीव भगवान के शरीर में लिप्त हो जाते हैं, मतलब अंदर हो जाते हैं। तो वो अंदर होते हैं, फिर बाद में जब सृष्टि की रचना करते हैं तब गुण के प्रभाव से जब जीव बाहर आता है तब उस कार्य को अपने सद असद यानी प्राप्त करता है। तो कहने का भाव तात्पर्य यही है कि भगवान का शरीर है वही धाम कहा जाता है, वहां से जीव प्रकट होता है, भगवान धाम के वापस नहीं आता है। भगवान के धाम जो शाश्वत धाम है वहां से जीव कभी वापस नहीं आता है। लेकिन जब इस सृष्टि की रचना स्थिति इसमें आया है ना, भगवान इस सृष्टि को पालन करते हैं, प्रकट करते हैं और इसका विनाश भी भगवान ही करते हैं। जब विनाश करते हैं पूरी सृष्टि का, प्रलय में भर जाता है, तब सारे जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं। फिर बाद में जब सृष्टि रचना करते हैं तब बार जीव प्रकट होते हैं और इसी तरह इस सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन उसमें भी जब स्वतंत्रता का भाव आता है तब इस भौतिक जगत में उसको डाल दिया जाता है, ताकि वो महसूस करे या अपना परिवार में कुछ हुक्म करे या नियंत्रण करे, कुछ उससे आगे देश का नियंत्रण करना चाहते हैं, इसी तरह उनको स्वतंत्रता का थोड़ा उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है। जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह जब गुण में बंध जाता है तब सद असद योनि प्राप्त करता है जीव, उसी तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। जिस तरह जीव का जन्म होता है उसी तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। तो किस लिए भगवान का जन्म होता है, तो इस श्लोक में जो शब्द आया है विना विनोदम बद तर्क याम है, भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में आने थे। विनोदम, इस विनोदम शब्द पर आचार्य ने बहुत चर्चा की है, पूरे श्लोक में उसी शब्द पर ही चर्चा की है और कहीं पर और किसी शब्द पर चर्चा नहीं की। एक ही मुख्य कारण है विना विनोदम, बिना कारण एक ही मुख्य कारण है आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। क्या भगवान के शाश्वत धाम में आनंद प्राप्त नहीं होता है, तो इस भौतिक जगत में आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। तब आचार्य कहते हैं कि भौतिक जगत में तो आनंद है, वो शाश्वत धाम में आनंद नहीं है, वहां विघ्न का आनंद है। जो भगवान का नित्य धाम है, शाश्वत धाम है, वहां मिलन का आनंद भगवान प्राप्त करते हैं और वो भक्त भी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं और उनका मिलन का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो मिलन से अधिक विरह और वियोग का आनंद जो प्राप्त होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। वही आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। इसी बात को कई श्लोकों में पुष्टि की है, गजेंद्र जी कहते हैं न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकस्य संजायते माम स्वमाया तन्मात्म कालम विच्छति। अपनी इच्छा के कारण भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, उनकी इच्छा के बिना किसी को भगवान को कोई बाधित नहीं कर सकते। भगवान हम भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि यदादि धर्म से या असुरों का संहार करने के लिए आते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि भगवान बाधित हो गए कि असुरों ने जब उपद्रव मचा दिया तब भगवान को आना पड़ा। लेकिन वो तो बात नहीं है, वो तो संकल्प मात्र से वो विनाश कर देते हैं, इसलिए भगवान बाधित नहीं करते। गजेंद्र कहते भगवान बाधित नहीं होते इस भौतिक जगत में आने के लिए, वो तो अपने आत्मा के आनंद के लिए या अपने आनंद प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। और साथ साथ में और आठवें स्कंद में कहते हैं सत्यव्रत राजा जो मत्स्य भगवान अवतार धारण करते सब लीला अवतार से भूताना भूत हेतवे ज्ञातुम इच्छामि रूप आदर्श भवता धृतम। श्री सत्यव्रत राजा कहते हैं कि सर्व लीला अवतार से सभी लीलाओं का भगवान अवतार धारण करते हैं, एक तो भूत भूतान भूत हेतव है जीवों हित के लिए, तो वास्तव में जीव का भगवान अवतार धारण करके जीव का कैसे हित होता है, तो जब भगवान लीला करते हैं उन लीलाओं का हमने पिछले श्लोक में सुना श्रवण करके उनका चिंतन करके उनका गुणगान करके जब जीव इस लाभ उठाते हैं तो उनका वास्तविक हित जीव का होता है। सद अनुग्रह पिछले श्लोक में आया है एक शब्द सद अनुग्रह, वास्तव की वही सद अनुग्रह है। अनुग्रह तो पूरे मनुष्य या सभी जीवों पर भगवान का होता ही है, लेकिन सद अनुग्रह वही है जो भगवान का लीला चिंतन स्मरण करे जो कोई व्यक्ति जो कोई जीव, तो निश्चित रूप से उनका वास्तविक हित होता है श्री सत्यव्रत राजा कहते हैं। और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण पहले प्रथम स्कंद में श्री हस्तिनापुर की जो स्त्रियां भगवान द्वारका में जा रहे थे जब हस्तिनापुर छोड़कर, तब स्त्रियां जब हस्तिनापुर की स्तुति करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस स्तुति जो हस्तिनापुर की स्त्रियां ने की है वो वेद स्तुति से भी महत्वपूर्ण है। जो वेदों में मंत्र है जो भगवान को गुणगान करते हैं उससे भी महत्वपूर्ण है जो इस हस्तिनापुर की स्त्रियां ने जो भगवान की प्रार्थना की है वो, उसमें वो कहते हैं स्त्रिया सवे अयम सख्य अनुगीतम सत्कथो वेदेशु गृहेशु स गृह आदि जो एक ईशो जगत आत्म लीलया सृजस्य व्यक्तनि न तत्र सृजस्य जो एक ईशो, यह एक ईश्वर है वो जो सबको कंट्रोल करने वाला है भगवान ईश्वर, वही जगत में क्यों आते हैं, जगत आत्मनि जगत को कल्याण करने के लीला करने के लिए ही आते हैं और कोई कारण नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए आते हैं, तो लीला किस रूप में करते हैं भगवान और क्यों करते हैं, तो कहते हैं इस श्लोक में कि बिना विनोदम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, और आनंद जो मिलन में है उससे अधिक वियोग में है विरह में है। इसी बात को जब हम सुनेंगे आगे और कृष्ण लीला पूर्ण रूप से इस दशम स्कंद सदा है श्रवण करेंगे तब आएंगे किस तरह भगवान वियोग का महसूस करते हैं और भक्त भी इस वियोग को अनुभव करते हैं, कितना आनंद प्राप्त करते हैं। और कई आचार्यों ने हमारे जो पूर्व आचार्य हो गए उनको इस वियोग और विरह के ऊपर चर्चा की है। जब भगवान श्याम सुंदर ब्रज में लीला कर रहे थे राधा रानी के साथ निकुंज में, तब श्याम सुंदर और राधा रानी निकुंज में बैठे थे और भगवान ने वैजयंती माला धारण की थी जो श्याम सुंदर है, और मोर पंख धारण करके वो राधा रानी बाजू में बैठी थी, और भगवान और निकुंज में बैठे हैं श्याम सुंदर और राधा रानी। और एक समय एक मधुमक्खी आता है मधुमक्खी और भगवान के आसपास घूमता है वो वैजयंती माला के आसपास, और उस घूमते हुए मधुमक्खी को श्रीराम सखा देख लेता है और देखते उस मधुमक्खी को भगा देता है धीरे धीरे करके वहां से। जब भगा देता है दूर तब वो आकर कहते हैं राधा रानी को कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है। तो मधुसूदन मतलब मधुमक्खी, जो मधु को संग्रह करते हैं उसको मधुसूदन भी कहते हैं। तो जब राधा रानी को कहते कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया यहाँ से, तो उस शब्द को सुनकर राधा रानी तुरंत मूर्छित होकर गिर जाती है। और गिर जाती है तब श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं, अरे मैं तो सामने ही खड़ा हूँ और अभी तो मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, वो पक्ष उसने हटा दिया, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। फिर भी मूर्छित अवस्था से राधा रानी बाहर नहीं आती, क्योंकि उतना सुनते ही मधुसूदन को मैंने यहाँ से भगा दिया, तो राधा रानी को ऐसा हो गया कि मधुसूदन यहाँ से चला गया। तो इतना विरह, इतना शब्द भी वो सहन नहीं कर पाई श्रीमती राधा रानी। तो इतना विरह उसको प्रकट हो गया श्रीमती राधा रानी को, और इतने आनंद में वो मूर्छित होकर गिर गई। तो उसी दृश्य को देखकर श्याम सुंदर को ऐसा लगा जो मिलन में आनंद है उससे अधिक विरह में, विरह का आनंद है, विरह में आनंद है। तब कई प्रयास के बाद राधा रानी मूर्छित अवस्था से बाहर आती है और कहते हैं श्याम सुंदर मैं आपके सामने हूँ, देखिए। इसी तरह इस विनोदम भगवान इसी तरह इस भौतिक जगत में आकर इसी तरह लीला करते हैं और भक्त को खुद आनंद प्राप्त करते हैं। ये तो राधा रानी का वियोग का आश्चर्य ने इस तरह शास्त्र में व्याख्या की है। और भगवान कृष्ण भी इसी तरह वियोग में, विरह में रहते हैं। जब द्वारका में मथुरा वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए भगवान कृष्ण, और द्वारका में जब 16,108 पटराने के साथ लीला करते हैं, और एक बार श्री द्वारकाधीश भोग आरोगने के लिए बैठते हैं और माता देवकी उनके सामने 56 भोग रखती है द्वारकाधीश के सामने। और 56 भोग रखने के बाद जब द्वारकाधीश देखते हैं उस 56 भोग को, तो देखने के बाद तुरंत खड़ा होकर चले जाते हैं। तो माता देवी की सोचने लगती कि ऐसे कैसे इतना बनाया है मैंने भोग और अपने हाथों से बनाया है, फिर भी ये छोड़कर चला गया, क्या कमी है मेरे में, मेरे बनाने में। तो दुखी होकर वो भी वहाँ से चली गई और 56 भोग ऐसे ही रह गया। और ये दृश्य श्री उद्धव जी देख रहे थे, तो उद्धव जी सोचने कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर प्रथम वो उद्धव जी जाते हैं माता देवकी के पास, और माता देवकी रड़ती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से 56 भोग बनाया फिर भी कृष्ण ने खाया नहीं, ग्रहण नहीं किया, क्या कमी है, तो हमने जो हमारे बनाने में या हमने में क्या कमी है जो इस ग्रहण नहीं करते हैं द्वारकाधीश कृष्ण। बहुत दुखी होती है माता देवकी, तब उदय जी को भी बहुत दुख लगता है और दुखी होकर उदय जी वहाँ चला जाता है और द्वारकाधीश के पास जाते हैं। और जब द्वारकाधीश के पास जाते हैं उद्धव जी और कहते हैं कृष्ण को कि तुमको पता है जब तुमने जो माता देवकी ने रखा था जो 56 भोग वो ग्रहण नहीं किया और छोड़कर आगे इधर, क्या कारण है माता, तुमको पता है कि माता देवकी कितना दुखी हो रही है, उसने प्रेम से बनाया था और तुमने ग्रहण नहीं किया, क्यों, क्या कारण है बताइए, छोड़कर आ गए। तब कृष्ण कहते हैं कि माता देवकी ने जो प्रेम से तो बनाया था बहुत अच्छा बनाया है, प्रेम से बनाया है, लेकिन माता देवकी ने जो 56 भोग में जो मक्खन मिश्री रख दिया था इस थाली में, उस थाली में वो मक्खन मिश्री देखकर मुझे माता यशोदा की याद आ गई, नंद बाबा की याद आ गई, गोपियों की याद आ गई, गायों की याद आ गई, पूरा व्रज की याद आ गई। और उद्धव जी को कहते हैं कि माता देवी को आज से कहना कि मेरे 56 भोग में कभी माखन मिश्री न रखे, जब माखन मिश्री रखे तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है और मैं इस भोग को ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। तो इसी तरह भगवान द्वारकाधीश होकर भी 16,108 पटराने होते हुए भी वो नित्य रूप से इस द्वारक व्रजवासी और वृंदावन की माता यशोदा नंद बाबा की गोपियों की गायों की याद करते करते विरह का अनुभव करते और आनंद प्राप्त करते हैं। इसी तरह कई लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की जो हमेशा व्रज की याद करते हैं और याद करते करते यो आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा आनंद शाश्वत धाम में नहीं है। शाश्वत धाम में हमेशा मिलन ही रहता है, लेकिन जो वियोग में जो विरह में आनंद है वो आनंद वो भौतिक जगत में वो आनंद है, वो शाश्वत धाम में नहीं है। इसलिए भगवान बिना विनोदम इसके अलावा और कोई कारण नहीं है जो भगवान इस भौतिक जगत में लीला करते हैं, जो इस जगत में आते हैं। दुष्टों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना, ये बाह्य कारण है, लेकिन वास्तव में तो यही कारण है जो भगवान इस भौतिक जगत में आकर अपने भक्तों को और खुद आनंद प्राप्त करते हैं, जो विरह देते हैं और इसका पूर्ण रूप से हमें आस्वादन और क्या है भगवान गौरंग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो वहां से जो द्वारका में भगवान कृष्ण थे तो विरह का विरह में इतना संतुष्टि उनको प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी राधा रानी की याद करते वो सोचते थे कि जितना राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है विरह में उतना मुझे भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राधा रानी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में और विरह का आस्वादन प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में अवतार धारण करते हैं। और हम जानते हैं कि गंभीरा में जो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कितना विरह महसूस करते हैं, हमेशा कृष्ण की याद में जगन्नाथ जी को देखते तो पूरा जगन्नाथ उछालन भी नहीं करते, जगह जगह करके मूर्छित होकर गिर जाते थे, इतना विरह। और कभी कभी तो कहीं कहीं चले जाते हो तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनको कमरे में बंद कर देते थे गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु को, कारण उनको ज्ञान ही नहीं रहता है चैतन्य महाप्रभु हम कहाँ स्थान पर है, किस स्थिति में है, इतना विरह में पूरा उनका शरीर कभी कभी कहीं लंबा हो जाता है, कभी कभी एकदम कछुए की तरह सुकड़ जाता है, इतना भाव प्रकट होता है चैतन्य महाप्रभु का। और कभी कभी उनको गंभीरा में कमरे में बंद कर देते थे तो प्रवाह होकर वो बाहर निकल जाते थे, इतना भाव में प्रवाह होकर कहीं थोड़ी सी किवाड़ में जगह रहती थी उस किवाड़ से बाहर निकल कर वो समुद्र के तट पर चले जाते थे और यमुना कहकर वहाँ कूद जाते थे, इतना चैतन्य महाप्रभु ने विरह का अनुभव का महसूस किया है, जो उस विरह को आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। इस बिना विनोदम इसके अलावा और कोई कारण नहीं है भगवान के इस भौतिक जगत में आने का। और देवताओं कहते हैं कि हम तर्क कर सकते हैं कि भगवान इस कारण आते हैं कि असुरों का नाश करने के लिए या पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, कहीं कहीं तर्क कर सकते हैं, लेकिन वो तर्क सही नहीं है। वास्तविक स्थिति यही है कि आप अपने आनंद प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। इसी तरह भगवान इस भौतिक जगत में आकर जो लीलाएं करते हैं उस लीला का चिंतन करने से, उस लीला का स्मरण करने से, उस लीला का गुणगान गाने से या सुनने से इस भौतिक जगत में इस मनुष्य मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई मतलब नहीं है जीव को, ये शरीर तो मतलब है उनको, शरीर वृद्ध होता है, नाश होता है या रोग होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा को कभी कुछ दुख कष्ट नहीं होता है, या जन्म नहीं होता या मृत्यु नहीं होता है। ज्ञानम चिंतयन्ति शास्त्राणि न जायते म्रियते वा कदाचित्, दूसरा अध्याय पूरा शरीर पर है भगवद गीता। तो अगर व्यक्ति इस लीला को जब स्मरण या चिंतन करता है तो वास्तविक प्रभुपाद कहते हैं वो स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और स्थिति प्राप्त करना है तो भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और चिंतन या स्मरण करना चाहिए। जब हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे तब निश्चित रूप से हमारा वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम कष्ट पा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे मुक्त होना है तो एक ही रास्ता है, इस भगवान का लीला गुणन करना। इस विनोदम शब्द का बहुत बहुत व्याख्या आचार्य ने की है, विनोद मतलब कि भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं या विनोद मतलब आनंद देने के लिए आते हैं, और दूसरा भी एक अर्थ होता है विनोद का अर्थ का कटाक्ष भर शब्द बोलना, कटाक्ष भर शब्द विनोद में मजाक में बात करना उसको भी विनोद कहते हैं। तो ऐसे भी लीलाएं भगवान कितने की है कि विनोद में राधा रानी या रुक्मणी को विनोद करके उनको मूर्छित भी कर दिया है कुछ बात कहकर। एक बार द्वारका में रुक्मणी को भी विनोद में मजाक में कहा था कि मैं तो एक ग्वाला हूँ, कृष्ण ने कहा कि मैं तो एक ग्वाला हूँ, तुम मुझ पर मोहित आकर आ गए, लेकिन आपको तो बड़े बड़े राजा प्राप्त करने के लिए चुप थे, हमको उनको सुनना था, मुझे क्यों सुना, मैं तो एक ग्वाला हूँ। ऐसे मजाक किए थे, विनोद किए थे रुक्मणी के साथ। तो इस बात को सुनकर रुक्मणी तुरंत मूर्छित होकर गिर गई। तो इसी तरह विनोद का मतलब ये भी होता है मजाक करना, तो वो भी इसमें भी निपुण है श्याम सुंदर विनोद मजाक करने में भी। तो इस लीला को भी स्मरण स्वस्थ कर सकते हैं और हम करते हैं, और आचार्य ने इस बात पर भी कई सारे व्याख्या की है, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो इस आचार्य का भी यही प्रयास रहता है कि इस लीलाओं को मनुष्य के सामने रखे ताकि वो चिंतन कर सके, इसका गुणगान कर सके, भगवान का रूप का स्मरण कर सके। तो स्मरण करने से जीव मुक्त हो सकता है, उनकी वास्तविक स्थिति प्राप्त कर सकता है। अन्य कलयुग में अन्य और कोई रास्ता नहीं है। जब भगवान का गुणगान सुनेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब हम अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और लीला करते हैं अपने आनंद के लिए और भक्त को आनंद देने के लिए, और उस आनंद देने के लिए और साथ साथ में स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। इसी तरह हमारे वास्तविक स्थिति प्राप्त करना है, जो जीव का स्वरूप है सनातन भगवान का अंश होने के साथ, तो वही स्थिति प्राप्त हम कर सकते हैं। और शाश्वत धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। जो शाश्वत धाम प्राप्त करना है तो भगवान का गुणगान और रूप का चिंतन करना हो और स्मरण करना महत्वपूर्ण है। वरना इस भौतिक जगत में सृष्टि होते हैं और जीव आते हैं और प्रलय होने के बाद भगवान के शरीर में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो शाश्वत धाम है वो प्राप्त करना है तो भगवान का श्रवण करना होता है। इसी महत्वपूर्ण इस विनोदम शब्द है कि भगवान की लीला का श्रवण करना और भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, और अन्य कोई कारण नहीं है। तो प्रभुपाद की कृपा से हम श्रवण करते हैं रोज श्रीमद् भागवतम का, तो वही एक हमारे लिए एक प्रमुख साधन है। जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो कुछ ना कुछ चिंतन होता है, प्राय 24 घंटे तो चिंतन नहीं होता है। विष्णु पुराण में कहा है स्मर्तैव सतत विष्णु विस्मर्तैव न जातु शिर, सतत भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और विस्मर्तैव न जातु शिर कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी लीला हम सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद की कृपा से हम इस भौतिक जगत में होते हुए भी प्रभुपाद की कृपा से जो भागवत दिया है उस भागवत को हम श्रवण करते हैं, तो उस श्रवण के माध्यम से ही हम कुछ चिंतन कर सकते हैं और इस चिंतन के कारण हम हमारा वास्तविक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का जो इस सत्र में आए हैं और हमें कुछ सेवा का अवसर दिया है, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिए, धन्यवाद। अगर कोई इस प्रसंग के अनुसार कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, इसमें पांच कुछ आया था कुछ जटिल प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद महाराज की, विदाई गौर से।